समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जी हाँ, रिश्तों की ये डोर बस यूं ही बनी रहे, प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी पंक्तियों के साथ आपका अभिनंदन। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
हेलो प्रियंका, नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी रिलैक्स्ड संडे एडिशन ऑफ आज सवेरे, वेयर वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 27th ऑफ अप्रैल। एंड प्रियंका ने बड़े पॉजिटिव नोट पे, रिश्तों की अहमियत पे जो है शो की शुरुआत की है। इनफैक्ट आई एम श्योर यू वुड हैव, बिकॉज आजकल व्हाट्सएप का दौर है तो बहुत सारी चीजें हम लोग तक पहुंच जाती हैं। सो देयर वाज अ स्टडी इन विच यू नो इट वाज यू नो अ स्टडी ऑफ हार्वर्ड अलुमनाई दैट वाज कंडक्टेड, उसमें पूछा गया कि आखिर लोग खुश कौन थे, क्योंकि उस स्टडी में प्रोफेसर्स भी थे, नोबेल लॉरियट्स भी थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने सुइसाइड्स की थी और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने प्रॉब्ली यू नो जेल भी गए थे किसी ना किसी क्राइम में, बट द कॉमन डिनोमिनेटर अमंग ऑल दोज पीपल हु वर हैप्पी वर दोज पीपल हु हैड द एबिलिटी टू प्रॉबेबली, जिन्होंने अपने रिश्ते संजो के रखे, यू नो, टू मेक रिलेशनशिप्स, टू नॉट जस्ट मेक रिलेशनशिप्स बट ऑल्सो कह सकते हैं रिश्ते निभाना, इन शॉर्ट।
जी हाँ, रिश्ते निभाने बहुत जरूरी, और खासकर आज के दौर में जब हम वो सोशल मीडिया के माध्यम से सबके साथ बताते हैं पर मन में अकेलापन है, इसलिए सबके साथ रहें, फैमिली के साथ रहें, बच्चों के साथ, अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ रहें, और अपना जो जीवन है वो खुशहाल बनाएं।
एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन टुडेज़ शो, लेट्स स्टार्ट विद द लेटेस्ट हेडलाइंस।
जी हाँ, आज संडे जैसे सायरा ने बोला भी, और खासकर ये है कि आज महीने का आखिरी रविवार है, और हर बार की तरह आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से दिन में 11 बजे मन की बात करेंगे। देश में सभी लोगों को इसका इंतजार रहता है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा, और हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा।
Yes, of course, today is the day of Mann Ki Baat, and another important event is going to happen in the days to come, Priyanka. The WAVES 2025 Summit, which will be held in Mumbai. Yes, the World Audio Visual and Entertainment Summit in Mumbai, India, will proudly unveil the Bharat Pavilion, a vibrant tribute to the country's profound legacy of storytelling and its growing influence in the global media and entertainment landscape. We have a report.
Guided by the theme of Kala to Code, the pavilion will celebrate India's spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, and showcase how the country's artistic traditions have long been a beacon of creativity, harmony, and cultural diplomacy. At the core of the Bharat Pavilion are 4 immersive zones that will take visitors through the continuum of Indian storytelling traditions. Shruti, spotlighting oral traditions from Vedic chants and folk ballads to classical music, radio and the spoken words. Kriti, highlighting written legacies, tracing the journey from cave engravings and palm leaf manuscripts to the evolution of print media, literature and modern publishing. Drishti, exploring visual expressions from ancient dance forms, puppetry and folk theatre to India's thriving cinema, television, digital and immersive storytelling ecosystem. And Creator's Leap, showcasing the future of storytelling with cutting-edge technology. With Ankita Apte, this is Deepmala Kaushik, Akashwani News.
गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी है। सूत्रों ने कहा है कि अब एजेंसी आतंकी हमले की घटना की औपचारिक जांच करेगी। इससे पहले एनआईए की टीम ने आतंकी हमले वाली जगह का दौरा किया था। यह हमला इस महीने की 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन वन क्षेत्र में हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।
Yes, indeed, a very, very tragic incident. And next story is related to that as well, Priyanka. The Information and Broadcasting Ministry has issued an advisory to all media channels to refrain from showing live coverage of anti-terrorist operations and movement of the security forces in the interest of national security. It said that the media, digital platforms and individuals play a vital role in safeguarding national security. The ministry asked them to refrain from reporting based on sources-based information related to defense operations or movement. It said premature disclosure of sensitive information may inadvertently assist hostile elements and endanger operational effectiveness and the safety of the personnel.
बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कई हादसे हुए हैं हमारे देश में और ऐसे संवेदनशील मुद्दों को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं भनक लगती है और खतरा पैदा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अंतरिक्ष तकनीक चिकित्सकीय क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 36 वर्षीय महिला की रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से एड्रेनल ट्यूमर निकाला गया है और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संदीप बंसल ने बताया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूमर है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर पवन वासुदेव ने कहा कि ये प्रक्रिया काफी जटिल थी।
The benefit is that because we were able to do it robotically, these patients were spared of an incision, so they have lesser post-operative pain, they recover fast, they need lesser painkillers and they can be discharged earlier and they return back to their work faster. This is a milestone in the sense that this is the world's largest adrenal tumor which could be removed in a robotic fashion.
Well, Priyanka, the next story is also a story of achievement and something similar because the Department of Ophthalmology in Army Hospital Research and Referral in New Delhi has achieved a milestone by introducing a 3D microscope for minimally invasive glaucoma surgery. This advanced technology provides three-dimensional visualization, enabling surgeons to perform complex eye surgeries with greater precision. The system also features special 3D polarization glasses and a 55-inch 4K Ultra HD display, reducing surgical time and complications both. This initiative underscores Indian Army's commitment to delivering top-tier medical services and cutting-edge eye care to its personnel and beneficiaries.
बिल्कुल, हम अत्याधुनिक जो चीजें हैं उसका विकास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अब विद्यार्थियों के लिए विशेष जानकारी दे देते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के बारे में संदिग्ध दावों की रिपोर्ट के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। एजेंसी ने अभ्यर्थियों को गलत काम करने और झूठे दावों के साथ परीक्षार्थियों को धोखा देने की कोशिश करने वाले बेईमान लोगों के बहकावे में न आने का परामर्श जारी किया है और एजेंसी ने परीक्षार्थियों से इस तरह की भ्रामक जानकारी और इसे फैलाने वाले लोगों की रिपोर्ट 4 मई को शाम 5 बजे तक एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर करने का भी अनुरोध किया है।
And in table tennis, the Indian pair of Manu Shah and Diya Chitale have clinched the mixed doubles title at the WTT contender Tunis 2025 held in Tunis, the capital city of Tunisia. We have more from our sports desk.
The Indian duo of Manush and Diya secured the summit clash with a thrilling 3-2 win over the second-seeded Japanese pair of Sora Matsushima and Miwa Harimoto yesterday. In IPL T20 cricket, the Kolkata Knight Riders and Punjab Kings shared points after the match was abandoned due to incessant rain and thunderstorms at Eden Gardens in Kolkata last night. Punjab Kings are now placed 4th in the table with 11 points from 9 games, while KKR are 7th with 7 points from 9 matches. In a double-header today, Mumbai Indians will face Lucknow Super Giants in Mumbai at 3:30 in the afternoon, while Delhi Capitals will take on Royal Challengers Bengaluru in Delhi at 7:30 this evening. In badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen will lead Indian Challenge at the Sudirman Cup in Xiamen, China starting today. In the first Group D clash, India will face Denmark at 2:30 p.m. IST. Apart from Denmark, India's other challengers in Group D are second seeds Indonesia and England. The top two teams from the group will advance to the quarterfinals. In football, Barcelona beat Real Madrid 3-2 to win the Copa del Rey final in Seville, Spain yesterday. The victory gave Barcelona a record-extending 32nd Spanish Cup title. Jules Koundé's late strike in extra time secured Barcelona's second trophy of the season, having earlier won the Spanish Super Cup, also by defeating Real Madrid. And in Indian Super League, Shield and Cup winners Mohun Bagan, Super Giant, beat Kerala Blasters 2-1 to enter Kalinga Super Cup semi-finals in Bhubaneswar yesterday. Manik Sharma, News Desk.
और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरें जानने का. सबसे पहले चलते हैं दिल्ली की ओर. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इसमें महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए जारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और उन्हें प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार किया. साथ ही जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनका नियमित रूप से दौरा करने और उनका समग्र विकास करने के लिए भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया. और मुख्यमंत्री ने कल शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में कई इलाकों का दौरा भी किया और इस दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया. आगे बढ़ते हैं. वॉकेथॉन का कई कहते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइज होती रहती कई विषयों पर और कल दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छ दिल्ली के लिए वॉकेथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया. हौस खास से शुरू हुआ ये वॉकेथॉन. इसमें 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए श्री अरबिंदो मार्ग तक पहुंचे. इस अवसर पर प्लॉग रन और स्वच्छ स्क्वाड वाहन मोबाइल इकाई का भी शुभारंभ किया गया. और इस वॉकेथॉन का नेतृत्व नगर निगम के दक्षिण जोन के उपायुक्त दिलखुश मीणा ने किया. मतलब इस तरह की पहल से लोगों को जागरूक करने में और बढ़ावा देने में साथ ही सेहतमंद बनाने में भी yes. फायदा मिलता है.
स्टेप्स पूरे हो जाते हैं.
और आगे बढ़ते हैं देश में. मुंबई की खबरों पर जाते हैं. देश में समय समय पर रोजगार मेले आयोजित हो रहे हैं और युवाओं को नौकरियों पर रखा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 15वें रोजगार मेले के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में नई भर्तियों में से लगभग 51,000 को नियुक्ति पत्र वितरित किए. और मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उनसे ईमानदारी से सेवा करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया. और मुंबई की खबरों पर रहते हैं तो बताते हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कोंकण से पहली ट्रेन रत्नागिरी स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हो गई है. इसमें करीब 800 तीर्थयात्री सवार थे. रेलगाड़ी 1 मई को वापस आएगी और इसमें बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए पूर्ण चिकित्सा और स्वयंसेवी सहायता की व्यवस्था की गई है. तो इस तरह की योजनाओं से खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं जो कहीं जा नहीं पाते तो बहुत अच्छी सी व्यवस्था रहती है. दिल्ली में भी ऐसी ही योजना है.
That's right, and if I can probably cover some other cities as well. Now let's see what's happening in Chennai. 54 officers from Defence Forces have graduated as qualified flying instructors from Air Force Station Tambaram on Saturday. Besides the Indian Air Force, the batch also had officers from the Indian Army, Navy and the Indian Coast Guard, and 2 officers from friendly foreign countries. They belong to the 158th Qualified Flying Instructors course that successfully completed a 24-week curriculum consisting of rigorous academic and flying training interspersed with tests at regular intervals. The valedictory function of the course was held at the Flying Instructors School. The Air Marshal extended his best wishes to the graduating officers for their future endeavors, emphasizing their role and responsibility in shaping the future of the Indian Air Force. Trophies were awarded to pilots who achieved distinction in flying and ground subjects. Moving on to Bengaluru, a framework memorandum of understanding or MOU was signed by ISRO on cooperation in space medicine with Sri Chitra Thirunal Institute for Medical Sciences and Technology. According to a media release by ISRO, this MOU will advance space medicine research and its applications, and it will also encourage innovations and developments in the fields of human physiological studies, radiation biology and medicine, and crew medical kit for space missions. These studies will help ISRO during its Gaganyaan human space mission, through which Indian astronauts will be sent to outer space. The studies will also help when ISRO builds Bharatiya Antariksh Station. The students pursuing PhD in space medicine will have ample opportunity to work in the specialized areas and drive innovations.
और कोलकाता पर नजर डाले केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कल कोलकाता जूट हाउस में एक नए हॉल का उद्घाटन किया. कोलकाता जूट हाउस 170 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत है और इस अवसर पर जूट निगम के सचिव शशि भूषण सिंह, जूट आयुक्त मलय चंदन चक्रवर्ती और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे.
Moving on to Hyderabad in Telangana, heat wave has gripped several parts of the state as five districts had the mercury shooting up beyond 45 degrees Celsius mark, while the day temperatures in Hyderabad remained well above 41 degrees Celsius. Highest maximum temperature was recorded at Adilabad at 45.5 degrees Celsius yesterday, followed by Nirmal recording 45.4 degrees Celsius and Jagatial recording 45.3 degrees Celsius. Met officials have forecast a slight drop in maximum temperatures, however, for the next couple of days across the state. Meanwhile, Jubilee Hills area recorded highest maximum temperature in Hyderabad at 42 degrees Celsius yesterday.
जी हाँ, आपने हैदराबाद के मौसम का हाल हमें बता दिया. अब महानगरों के पूरे जो है मौसम जान लेते हैं कैसा रहेगा मिजाज. दिल्ली में कल हमने देखा दिन में कल तेज धूप थी, लेकिन शाम को मौसम बदल गया, हवाएं चलने लगी और आज भी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और गरज के साथ बिजली भी गिरने की संभावना है, चमकने की संभावना है और आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
And if we talk about other cities down south, well, Chennai is expected to have a partly cloudy sky today and temperature in Chennai will hover between 28 and 36 degrees Celsius, while Bengaluru will also have a partly cloudy sky. Minimum temperature was 21, while maximum will be around 36 degrees Celsius. And Hyderabad, ka aapko already bataya, there is a heat wave going on over there, so temperatures will likely hover around 40 degrees Celsius.
और अब चलते हैं इतिहास में और जानते हैं कि आज 27 अप्रैल को इतिहास के पन्नों में क्या क्या दर्ज रहा. 27 अप्रैल 1960 को दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज यानी राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई.
ऑन दिस डे इन 1854 द फर्स्ट टेलीग्राम वॉज सेंट बिटवीन मुंबई एंड पुणे.
1992 में आज ही ब्रिटिश नेता बेटी बुथरॉयड ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की स्पीकर बनी. संसद के 700 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को ये ओहदा मिला. वे 23 अक्टूबर 2000 तक इस पद पर रही थी.
एंड इन 1878 द कैलकटा यूनिवर्सिटी स्टार्टेड वुमेन्स एजुकेशन एंड अलाउड वुमेन टू अपियर इन द एंट्रेंस एग्जाम्स.
27 अप्रैल 2006 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नई इमारत का निर्माण शुरू हुआ और इसी जगह बनी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत हम जानते हैं 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमले में गिर गई थी, ढह गई थी और 521 मीटर ऊंची और 104 तल वाली इस इमारत को 3 नवंबर 2014 में खोला गया था.
On this day in 1904, the Australian Labour Party became the first Labour government in the world. Also on this day in 1993, a national credit fund for women called the Rashtriya Mahila Kosh was set up. In 1961, NASA launched the Explorer 11 into the Earth orbit to study gamma rays. And in 2005, Airbus A380, world's largest commercial jet, took its first flight.
अब याद करते हैं जानी मानी हस्तियों को. आज जयंती है उस पीढ़ी के व्यक्ति की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के साथ भी सक्रिय होकर काम किया और उसके बाद आजाद भारत में भी उन्हें प्रतिबद्धता पूर्वक काम करने का लंबा अवसर मिला. हम बात कर रहे हैं मणिभाई देसाई की. देश के स्वतंत्र होने के समय वे नौजवान थे, विज्ञान के विद्यार्थी थे, अपनी जीवनधारा चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी को दिए अपने संकल्प को निभाया. मणिभाई देसाई आजीवन गांव वालों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम करते रहे. गांधीजी ने 1946 में पुणे के पास उरुलची कांचन में नेचर क्योर आश्रम यानी निसर्ग उपचार आश्रम की स्थापना की और दायित्व सौंपा मणिभाई को. मणिभाई देसाई ने ग्रामीण भारत के सतत विकास के लिए भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान की स्थापना की और उनके कार्यक्षेत्र में उनकी कर्मठता का प्रमाण स्पष्ट देखा गया 1968 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। 1982 का रेमोन मैग्सेसे भी उन्हें प्राप्त हुआ था।
Today we are also remembering T.K. Mahatma, not only a freedom fighter but also a social reformer in Kerala. He was born on 2nd September 1885 at Karithikapalli in Alappuzha district. He met Gandhiji at Tirunelveli in 1921 and informed him about the pathetic caste-ridden social situation and the conditions of lower caste communities in Kerala. He started a newspaper from Kollam in 1917 known as Desh Abhimani and later became the editor of the same newspaper. Through this newspaper, he demanded the abolition of evil social practices like untouchability. So he is popularly known as Desh Abhimani T.K. Madhavan. It is widely accepted that the influence of T.K. Madhavan forced Gandhiji and International Congress to include the abolition of untouchability in their national agenda, and he participated in the Kakinada session of the International Congress and moved a resolution for eradication of untouchability with support of Jawaharlal Nehru in 1923.
और अब चलते हैं भारतीय फिल्मों के साइलेंट एरा में, यानी मूक फिल्मों का जब दौर था, उस समय जन जन तक सिनेमा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले जेएफ मदन का जन्म 1856 में आज ही गुजरात के नवसारी में हुआ था। एक प्रॉप बॉय के रूप में थिएटर में उन्होंने अपनी शुरुआत की। 1902 में कोलकाता में विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एल्फिस्टन बायोस्कोप कंपनी की शुरुआत की, जो बाद में मदन थिएटर्स के रूप में विकसित हुई। 1917 में फाल्के की फिल्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का संक्षिप्त संस्करण, जो मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का उन्होंने निर्माण किया, ये कोलकाता में बनने वाली पहली फीचर फिल्म भी मानी जाती है। और उन्होंने 100 से ज्यादा मूक और बोलती फिल्में बनाई तथा 127 सिनेमा हॉल संचालित किए, और उस समय देखिए बहुत बड़ी बात थी।
एब्सोल्युटली।
और अब याद कर रहे हैं हरदिल अजीज जोहरा सैगल को, एक ऐसी अदाकारा को जिन्होंने थिएटर से लेकर फिल्मों तक विभिन्न ऐसे किरदारों को अपने अभिनय से रोशन किया। आज उनकी जयंती है। 27 अप्रैल 1912 को जन्मी जोहरा को थिएटर से बेहद लगाव था। जोहरा ने पृथ्वी राज कपूर के थिएटर में करीब 14 साल तक काम किया।
Yes, a very fine actress and also a dancer and choreographer. She began her career as a member of contemporary dance troupe and then later transitioned into acting roles beginning in the 1940s. Zohra Sehgal appeared in several British films as well, in some television shows and also some Bollywood productions in a career that spanned over 8 decades. She was awarded the Padma Shri in 1998, the Kalidas Samman in 2001, and in 2004 the Sangeet Natak Academy, which is India's National Academy for Music, Dance and Drama. It presented her with its highest award, the Sangeet Natak Academy Fellowship for Lifetime Achievement. She received the Padma Vibhushan, India's second highest civilian honor, in 2010. And she passed away in New Delhi on 10th of July due to cardiac arrest.
बिल्कुल, और आपने उनकी बात की, उन्होंने मशहूर कोरियोग्राफर के साथ अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर डांसर की। वे पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जर्मनी जाकर बैले डांस सीखा। प्रख्यात नृतक उदय शंकर के नृत्य समूह में वे बतौर नृत्यांगना जुड़ी और 1946 में नीचा नगर से अपने अभिनय की पारी की शुरुआत की, जो 2007 तक चली। और अगर उनकी बाद की फिल्मों की बात करें तो उसमें वीर जारा, चीनी कम, सावरिया, हब दिल, दे चुके हैं सनम में वे नजर आए। हम उनकी फिल्म का डायलॉग नहीं, पर उन्होंने किस अंदाज एक मशहूर शायर की नज्म पढ़ी है, आपको सुनाते हैं।
मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरी महबूब नमा, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है, तेरा गम है तो गमे दर का झगड़ा क्या, तेरी सूरत है आलम में शमानों सार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा।
کیا بات ہے, بہت خوبصورت نظم اینڈ کیا ماڈیولیشن تھا وائس کا, isn't it?
یہ ایکسپیرینس انوبھو درشاتا ہے.
Yes, and obviously the theater experience, how can we undermine that? Moving on, we are remembering Raj Shekhar Basu today, who is better known by his pen name Parshuram. It's his death anniversary today. He was a chemist, author and lexicographer. He was chiefly known for his comic and satirical short stories and is considered the greatest Bengali humorist of the 20th century. He was awarded the Padma Bhushan in 1956. Basu began his writing career in the 1920s. He adopted the pen name of Parshuram while writing humorous pieces for a monthly magazine. His first book of stories, Gardalika, was published in 1924 and drew praise from such personalities as Rabindranath Tagore himself. In 1937, when he published Chalantika, a monolingual Bengali dictionary, Rabindranath Tagore commented that, "At long last, we have a dictionary for Bengali. The concise grammar for Bengali that you have included in the appendix is also wonderful." Unquote. Basu's collection of short stories, Anandi Bai Itiyadi Galpa, won a Sahitya Akademi Award for Bengali Literature in the year 1958.
اور آج ہی کے دن اس دنیا کو الوداع کہا تھا جانے مانے ابھینیتا اور فلم نرماتا نردیشک فیروز خان نے. وہ اپنی خاص شیلی, الگ انداز اور کرداروں کے لیے جانے جاتے رہے. فیروز خان کا جنم 25 ستمبر کو بنگلورو میں ہوا تھا اور انہوں نے اپنی کئی فلموں میں کاو بوائے ہیٹ پہنا تو لوگوں نے ان کی تلنا کلنٹ ایسٹ ووڈ اور سٹیو میکیون جیسے دگجوں کے ساتھ کر دی. کئی فلمیں بھی انہوں نے بتائی, جیسے ہم نے آپ کو بتایا ان میں سے ایک تھی دھرماتما, جو بالی ووڈ کی پہلی فلم تھی جس کی شوٹنگ افغانستان میں ہوئی تھی. اس میں انہوں نے اداکاری بھی کی تھی اور گیتوں کو خوب پسند کیا گیا. دھرماتما ہالی ووڈ کی مشہور فلم گاڈ فادر کی ری میک تھی. آئیے سنتے ہیں اس فلم کا یہ سندر گیت.
تیرے چہرے میں وہ جادو ہے, چہرے میں وہ جادو ہے, بن ڈور کھینچا جاتا ہوں, جانا ہوتا ہے اور کہیں تیری اور چلا آتا ہوں.
Yes, his real name was Zulfikar Ali Shah Khan and he's known for his roles. In fact, آپ نے کہا نا وہ cowboy hat, تو ایک persona بھی ہوتا ہے ہر انسان کا, isn't it? تو فیروز خان probably ان کو دیکھ ہی ایسا لگتا تھا کہ بڑی رائل سی پرسنالٹی ہے, اینڈ دیٹس وائی ہی پلیڈ ویری, یو کین سی, کیریکٹرز دیٹ ور کوائٹ رچ.
ایسی راجکمار بھی تھے جیسے لگتا تھا سوٹ کرتا تھا یہ نام کی راجکمار ہے.
اینڈ اگر آپ نے جو ان کی بنائی ہوئی فلمس تھی آپ نے دیکھا ہوگا, ہی واز فونڈ آف ڈرائیونگ imported cars, so when at a time when probably people were not, those cars were not available, he used to get them in India aur unhi cars ko wo shoot bhi karte the apni films mein. And he also had a very unique interest of horses, so he had a huge farm, it is said, and that's why unki filmon mein agar aapne notice kiya wo kai baar horse riding bhi karte dikhte the, so those horses also belong to his farm as well. And he appeared in over 60 films, and noted among them were Aarzoo, Safar, Upasna, Mela, Apraadh, چھوٹے سکے, کالا سونا, دھرماتما, ناگن, قربانی, کچے ہیرے, جاں باز, دیاوان, یلغار, اینڈ لاسٹ آف کورس واز ہز پرفارمنس ان دا فلم ویلکم.
آپ نے دیاوان فلم کی بات کی اور ایسی ہی قربانی تھی جسے انہوں نے ڈائریکٹ بھی کیا تھا اور اس میں ابھینے بھی کیا تھا, اور اس میں جو تھے فیروز خان کے جو دوست تھے ونود کھنہ, ان دونوں موویز میں تھے. اور قربانی فلم کی بات کرے تو فیروز خان کے لیے جس دوست نے اپنی قربانی دی وہ تھے ونود کھنہ فلم قربانی میں. اور واسطہ میں بھی فیروز خان اور ونود کھنہ گہرے دوست تھے, اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں دوست ایک ہی تاریخ کو رخصت ہوئے. آج جانے مانے ابھینیتا ونود کھنہ کی بھی پنیہ تیتھی ہے, جنہوں نے بطور ولن اپنے فلمی کریئر کی شروعات کی اور پھر ایک ہیرو کے روپ میں اپنی جگہ بنائی. انہوں نے کئی شاندار فلموں میں کام کیا جس کے گیت بھی بے حد سراہے گئے.
میرا ہی میری منزل ہے تو, میں ہوں لہر اور ساحل ہے تو, جیون بھر ساتھ نبھائے, جیون بھر ساتھ نبھائے.
اور अब आपको जाते जाते बता देते हैं जो कल्चरल इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, 27 अप्रैल यानी आज नई दिल्ली में लाल किला केंद्र संग्रहालय में दिल्ली की गाथा शहरों का शहर नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
And those of you who are foodies, there's a very unique Avdhi food festival that will be held in IIC, India International Center, tomorrow, Monday.
जी हाँ, ठीक है. तो अगर आप लाल किला केंद्र संग्रहालय में जाना चाहते हैं तो आज शाम 6 बजे से आज 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा, और जरूर जाएं और आनंद उठाएं, हमारे ऐतिहासिक जो भी चीजें होती हैं उसको उससे रूबरू हों. समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो प्रियंका और सायरा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की.
नमस्कार.